सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, ये एक लंबी सूची है भारत की कवित्रों की जिन्होंने अपनी कविताओं और रचना से समाज को अलग दिशा और दशा दी। ऐसी ही तमाम कवित्रियाँ भारत में हुई हैं और अभी भी हैं। बहुत को पहचान मिल जाती है लेकिन बहुत गुमनाम ही रह जाती हैं। ऐसे ही हजारों कवित्रियों जो शायद गुमनाम रह जाती, उनकी रचनाएं प्रकाशित न हो पाती या फिर शायद उनको इतने अवसर नहीं मिल पाते हैं। इन लोगों के लिए पिछले 25 सालों से डॉक्टर लारी आज़ाद कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया पोइट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना अमृता प्रीतम से प्रेरित होकर की। आज उनके साथ 15,000 से ज़्यादा कवित्रियाँ जुड़ी हुई हैं। वैसे डॉक्टर आज़ाद स्वयं मेरठ यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं लेकिन हृदय से कवि हैं। बीते 25 सालों में उन्होंने कवित्रियों के लिए बहुत कार्य किया है। विश्व के 51 देशों में वो इन कवित्रियों का समागम कर चुके हैं। हर साल 60 कवित्री को 1.5 लाख के पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। 50 से अधिक महिलाओं की रचनाएं प्रकाशित कर चुके हैं। शायद महिलाओं के मान सम्मान, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन के लिए इतने वर्षों से डॉक्टर आज़ाद का कार्य वास्तव में अतुलनीय है। अपनी इस यात्रा के बारे में डॉक्टर आज़ाद बताते हैं।
जी, बहुत सुंदर सवाल किया आपने जनाब फैसल फरीद साहब। मैं तो उच्च शिक्षा के पेशे से 35 सालों तक विश्वविद्यालय में मैंने प्राध्यापन किया है, और जब मैं एक इतिहास के प्राध्यापक के रूप में अपना रोजी रोटी कर रहा था, उसी समय 1975 से 1999 तक मैं मंच का भी एक पेशेवर कवि के तरह से समझे कि मैं उस वक्त काफ़ी प्रख्यात हो गया था। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो नाम अभी मैं लूँगा तो आप चौंक जाएंगे कि कितनी जल्दी मैंने शुरुआत की थी। जब मैं मंचों पर चढ़ा तो उस समय राम नरेश पांडे जी, जो हल्दी घाटी के प्रसिद्ध कवि थे, और गोपाल सिंह नेपाली और उस वक्त के तमाम बड़े लोग जो है आते आते वो पीढ़ी नीरज तक आई, शिवमंगल सिंह सुमन तक और अज्ञेय तक, इन लोगों के साथ मैं मंच पर चढ़ा। उर्दू में मैं ये समझिए कि तमाम जितने बड़े लोग रहे हैं, कुमार बाराबंकी साहब और जिनके पास मैंने वो किया, लेकिन मूल रूप से मैं संचालक और निजामत करता था। जब 90 के दशक के बाद काव्य मंच जो है, ये कह लीजिए कि मुशायरों का जो मंच था, ये इतना पेशेवर हो गया कि इसमें चुटकुलेबाजी और सिर्फ जो है वो रह गई, लफाजियां रह गई, यानी जो उसका कविता थी, जो गजल थी, वो चीज़ वहाँ ख़त्म होने लगी। तो मेरा मन वहाँ से हट गया और फिर मैं चूँकि आज़ाद ख्याल आदमी हूँ, मेरे नाम में ही आज़ाद लगा हुआ है, तो मैंने फिर उस वक्त 1999 में मैंने परिकल्पना की। और आपने जो एक लफ्ज़ पूछा, मैं मिलेनियम की सबसे बड़ी पोइटेस अमृता प्रीतम जी से जुड़ा हुआ था, पद्मश्री पद्मा सचदेव साहिबा, पद्मश्री प्रभजोत कौर साहिबा, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इंदिरा गोस्वामी जी, डॉक्टर महेंद्र कौर गिर जी, रमनिका गुप्ता, ये वो बड़े नाम हैं जिनसे मैं जुड़ा रहा। और 1999 में मैं इन सब लोगों को लेकर के 165 बहनों के साथ मैंने ऑल इंडिया पोइट्स कॉन्फ्रेंस से शुरू किया। और ये सफ़र मुझे मालूम नहीं था कि बहुत लंबा जाएगा या वाकई में कोई संस्था बन रही है, लेकिन अमृता जी ने उस वक्त मुझे कहा था या लिखा भी था, और उन्होंने टीवी में इंटरव्यू भी दिया था कि आप एक तारीख बना रहे हैं। खैर, ये सफ़र जो है वो फरीद साहब शुरू हुआ 1999 में, और अब तक इसका ये सिल्वर जुबली ईयर है। और इन 25 सालों में लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में, 36 मुल्कों में हमने जो है इसकी 51 सम्मेलन किए हैं, और ये अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन ऑल इंडिया पोइट्स कॉन्फ्रेंस, कुल हिंद शायरा इजलास।
ऐसा नहीं है कि इनके साथ सिर्फ हिंदी भाषी महिलाएं जो कविताएं लिखती हैं वही जुड़ी हुई हैं। विदेशों में जहाँ जहाँ भी इन्होंने कार्यक्रम किए, वहाँ की महिलाएं जो कविताएं लिखती हैं इनकी सहभागी रहीं। भारत की अधिकतर भाषाओं में महिलाएं जो कविताएं लिखती हैं, रचनाएं लिखती हैं, इनके मंच पर सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उपस्थित रहीं। खुर्जा एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से इनका कारवां शुरू हुआ और पहला समागम हुआ, और ये धीरे धीरे कई महाद्वीप में पहुँचा, अमेरिका, चीन, मकाऊ, हांगकॉन्ग, इजिप्ट, टर्की, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, नीदरलैंड से लेकर सेंट्रल एशिया, खाड़ी देश और भारत के कोने कोने में इन्होंने समागम किए और हजारों महिलाओं को ढूंढकर तराशा।
दरअसल इसका नाम ही है ऑल इंडिया पोएट्रीज कॉन्फ्रेंस। भारत की जितनी भी ज्ञात और लुप्त प्राय भाषाएं हैं, जो बड़ी भाषाएं जैसे तमिल है, बांग्ला है, हमारी हिंदी है, उर्दू है, उड़िया है, गुजराती है, इन भाषाओं से भी लेकर जो छोटी छोटी भाषाएं हैं जैसे गारो है, खासी है, डोगरी है, कोंकणी है, मलवानी है, हमारी इस संस्था में अब तक इन विगत 25 वर्षों में लगभग 15,000 बहनें जुड़ी हैं और जो सक्रिय रूप से लगातार हमारे सम्मेलनों में आती हैं। ये संस्था जो है वो बहुभाषी है और जहां हम जिस देश में जाते हैं वहां की भी जो है वो जो कवित्रियां होती हैं हमसे जुड़ती हैं। और हमने अब तक जिन देशों में किया है उसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, तो हमने उन भाषाओं को भी, जैसे भारत में हमारे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगीज, हंगेरियन, पोलिश, स्वीडिश, इन तमाम बहुत सारी भाषाओं में हम लोगों ने वर्कशॉप किया। मेरी कविताओं के 50 भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुए और हम लोगों ने एक प्रकाशन का भी वो किया, जो कवित्रियाँ अपनी पुस्तकें नहीं प्रकाशित कर पा रही थी, ऐसी हमने 50 पुस्तकें प्रकाशित की। हर वर्ष हम लगभग 60 कवित्रियों को 1.5 लाख रुपए का सम्मान देते हैं और इसके अलावा हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पत्रिका निकालते हैं कालजयी, जो पूरी की पूरी आर्ट पेपर पे है, पूरी कलर्ड है और जो कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहुत ज्यादा संख्या में जुड़े हैं, लगभग 5-7 हजार की संख्या में। तो हम लोग एक इंटरनेशनल जर्नल भी निकालते हैं, जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। और इसके अलावा हम लोगों के जो है वो मुख्य उद्देश्य है कि लिंगुअल हारमोनी के माध्यम से, यानी भाषाई सौहार्द के माध्यम से राष्ट्रीय एकता। और हम लोग जो पूरी दुनिया में घूमते हैं तो भारतीय संस्कृति के जो महान आदर्श हैं उनको जो है वो वहाँ पहुँचा करके विश्व शांति की बात करते हैं। और इसके अलावा ये सबके केंद्र में जो है वो नारी है। मैंने अपनी माँ की याद में, चूंकि बहुत बचपन में मैंने माँ को खो दिया था, तो अपनी माँ की याद में इस संस्था को मैंने समर्पित किया और फरी साहब ये कारवां बहुत खूबसूरत चल रहा है।
एक पुरुष होकर डॉक्टर आज़ाद महिला कवित्री के लिए कार्य कर रहे हैं, इन सब को उन्होंने अपनी माँ को समर्पित किया है। आज भी रक्षाबंधन के अवसर पर उनके पास हजारों हजार राखियाँ भारत के कोने कोने से आती हैं। अमृता प्रीतम की प्रेरणा और डॉक्टर आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया ये एक छोटा सा पौधा आज एक वट वृक्ष बन चुका है।
नहीं, बहुत ही ये जो है ईश्वर की कृपा है और बहुत ही बड़ा ये सुंदर वो रहा कि जैसे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय और ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे महात्मा गांधी, इन लोगों के ने वो महिला उद्धार के लिए बहुत सारा, नारी शिक्षा के लिए और नारी साहित्य के लिए, तो जब से ये एक दौर आया स्त्री विमर्श का, दलित विमर्श का और साहित्य को खानों में बांटने का, तो बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से इधर लोग वो हुई, मतलब उन्मुख हुई। और जो हमारा साहित्य है, जो हमारा प्रकाशन है, जो हमारे सम्मेलन है, ये 3-3 दिन तक चलते हैं और जब विदेश में होते हैं तो और ज्यादा समय तक चलते हैं। तो ये जो है वो एक बहुत ही, इनमें काफी विश्वविद्यालयों में शोध भी हो रहे हैं, काफी प्रकाशन भी हुए हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी आई हैं विभिन्न भाषाओं में। AIPC की अपनी यात्रा पर, मतलब 1,000 पृष्ठ की एक पुस्तक आई, ये ज्वार अब रुके ना, और इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं में, कन्नड़ में आई, मलयालम में आई, हिंदी में आई, अंग्रेजी में आई। तो ये बहुत ही मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अवसर मिला कि हम जो है वो मातृशक्ति के लिए काम कर सकें और हमारी बहनें भी वो एक ये कह लीजिए कि मुझे इतना सम्मान करती हैं। रक्षाबंधन का सब समय आता है तो मेरे पास शायद, मुझे उम्मीद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा राखियां मेरे पास आती हैं।
डॉक्टर आज़ाद को आज भी याद है जब उन्होंने कुछ दिव्यांग महिलाओं को मंच उपलब्ध कराया, उनकी रचनाएं प्रकाशित की, एक घर में काम करने वाली लड़की को यूरोप तक ले गए और उसकी रचनाएं प्रस्तुत करवाईं। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी थीं जो शायद पहली बार घर से निकली, या फिर पहली बार विदेश यात्रा की, या फिर पहली बार जहाज पर बैठी। आज डॉक्टर आज़ाद इन सब के संरक्षक हैं।
हाँ जी हाँ, बहुत ये आप कभी हमारी वेबसाइट से गुजरेंगे या गूगल पर देखेंगे या विकिपीडिया में, अब तो लगभग दुनिया के सारे सर्च इंजन पर ऑल इंडिया पोलिटिक्स कॉन्फ्रेंस की इतनी हजारों फोटोग्राफ्स हैं, तमाम साइट्स पे हैं, तमाम जो है वो दुनिया के विभिन्न मीडियाज पर हैं। तो हमने ऐसी कवित्रियों को जो कि ये कह लीजिए दिव्यांग थी या डिफरेंटली एबल्ड थी या फिजिकली चैलेंज थी, जो जन्मांध थी या जो कभी बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी या जो कभी बहुत ही मतलब जिनको वो था और जिनकी पुस्तकें आई, जब उन्हें सम्मानित किया, और हमने ऐसे लोगों को भी किया जो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। मुझे याद है कि एक महिला ने मुझे बताया जब हमारे सफर में वो यूरोप में थी, तो बताएं कि सर मैं एक उसमें मतलब एक ऑफिस में मैं पियोन हूँ, और आप ये समझिए कि आज वो स्वर्गीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इंदिरा गोस्वामी जी के घर में जो बच्ची काम करती थी उसको मैंने उसी मंच पर रायपुर में मैंने काव्य पाठ करवाया। वो बच्ची भी लिखती थी और वो इतनी अच्छी बात है कि हमने ऐसे ऐसे, हमारी उम्र का भी कोई बंधन नहीं है, किसी भी उम्र की ज्ञात अज्ञात प्रसिद्ध और गुमनाम सारी कवितियाँ एक ही मंच पर होती हैं, और बड़ी बहुत सारी यादगार कहानियां हैं। लोगों का ये कहना था, जैसे एक महिला ने कहा कि मैं पहली बार जहाज पे चढ़ी, एक महिला ने कहा कि मैं पहली बार घर से निकली, तो मुझे वो शब्द याद आए महाश्वेता देवी के कि उन्होंने कहा जब वो ज्ञानपीठ लेने के लिए आ रही थी कि मैं पहली बार ट्रेन पर बैठी। तो ऐसी ही बहुत सारी बहनें हमारी आती हैं जो कहती हैं कि मैं तो पहली बार घर से निकली और ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मुझे विश्व स्तर का मंच मिलेगा, तो आंखों में आंसू भी आ जाता है। और कभी आप फोटो में देखेंगे तो मंच पर बहुत सारी औरतों की आंखों से बहुत ही मतलब आंसू धारा बह रही है जब उनको ये मान सम्मान मिलता है या जब उनको मंच मिलता है या जब वो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों और बड़े बड़े उनके सामने उन्हें सम्मानित किया जाता है, तो बहुत ही होता है कि मेरा भी दिल भर आता है।
यही नहीं, जहाँ पर भी डॉक्टर आज़ाद इन महिलाओं के साथ गए, विश्व शांति का संदेश, भारत का मान सम्मान और ध्वज हमेशा ऊंचा रखा। लखनऊ से फैसल फरीद।